ओम शांति। अभी हमारा सेशन शुरू हो रहा है, उसका टॉपिक है शांति एक लुप्त कड़ी। और हमारे बीच में है गीता दीदी जी, जो दो दिन से हमारे ऊपर ज्ञान की बरसात कर रहे। मौसम भी देखो कितना सुनहरा है, सुंदर है, और उसके साथ साथ वो हमें ज्ञान से भी भरपूर कर रहे हैं। ज्ञान के अनेक राज जिनको आज तक हम जीवन में ढूंढते थे, लेकिन आज उन्होंने हमारे सामने बहुत ही सहज शब्दों में रखा है, इसलिए हम दो शब्द कहना चाहेंगे। धन्य हो रहा है जीवन ज्ञान की गहराई से, धन्य हो रहा है जीवन ज्ञान की गहराई से, मिल रहे हैं अमूल्य रतन इस ज्ञान सरोवर से, मिल रहे हैं अमूल्य रतन इस ज्ञान सरोवर से, शांत मन स्वच्छ तन मिला है यहाँ आने से, शांत मन स्वस्थ तन मिला है यहाँ आने से, इसलिए अभी भी हमें जानना है गीता दीदी से, इसलिए हमें अभी भी हमें जानना है गीता दीदी से।
ओम शांति। अच्छा लग रहा है सबको? हाँ, खुशी हो रही है? जितने भी सेशंस अटेंड किए अब तक, मुख्य सार क्या समझ में आ रहा है? हमें स्वयं में परिवर्तन लाना है, अर्थात स्वयं में जो गुण और शक्तियां हैं, जिसकी कमी हो रही है, वो हमें अपने आप में भरना है। परिवर्तन संसार में होता ही रहता है, है ना? कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है। गीता सार में यही बताते हैं ना कि परिवर्तन संसार का नियम है। Nothing is permanent in this world. Only change is permanent. हर क्षण परिवर्तन होता रहता है, और जब भी परिवर्तन की बात आती है, हम हमेशा पहले दूसरों में परिवर्तन करना चाहते हैं। फलाना बदले तो सब ठीक हो जाएगा, हाँ, बस ये एक ठीक हो जाए सारा कारोबार ठीक हो जाएगा। तो हम दूसरों के लिए सोचते, पर वास्तव में परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से करनी, खुद से करनी। और जब खुद को ठीक कर लेते हैं, तो अपने आप धीरे धीरे हमारे आसपास जो कुछ है वो सब कुछ रिसेट होने लगता है। भगवान ने बहुत सहज विधि अपनाई है कि सुखमय संसार स्थापन करना है। आपने यहाँ गेट पर नाम पढ़ा होगा, एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड, बेहतर संसार के लिए। और हम सब चाहते हैं कि सुखमय संसार, है ना? अगर मैं आप सबसे पूछूं कि हम कैसा संसार, कैसा समाज चाहते हैं, तो हरेक के तरफ से बहुत सुंदर विचार मिले। पर संसार को बेहतर बनाने में हम सबका सहयोग चाहिए। अगर आज संसार कलयुगी बन गया, तमो प्रधान बन गया, अव्यवस्थित बन गया, तो वो किसके कारण, किसके कारण? हाँ, कोई एक को हम दोषित नहीं कर सकते ना, कि भाई राजनेताओं ने इसको ऐसा बना दिया या अभिनेताओं ने ऐसा बना दिया। किसी को हम एक को दोषित नहीं कर सकते ना। समाज के जितने भी वर्ग, जितने भी उन वर्गों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हरेक के द्वारा जाने अनजाने कुछ न कुछ नेगेटिविटी एक्टिव होती है, तब तो संसार का ये स्वरूप आज दुखमय अशांत तमो प्रधान बन गया। तो अगर हमें संसार को बेहतर बनाना है तो हम सबको सबकी तरफ से अपनी अच्छाइयों का सहयोग चाहिए। हरेक अपनी अच्छाइयों को विकसित करे और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज की सेवा के लिए अगर उसको कंट्रीब्यूट करे तो हम क्यों नहीं बना सकते, है ना? देखो, एक फैक्ट्री है, कंपनी है, उसमें 500 लोग काम कर रहे हैं, 90% लोग काम करना चाहते हैं और अपना अधिकार लेना चाहते हैं। काम करो और अपनी पेमेंट लो। पर 5-10% ही ऐसे होते हैं जो काम करना नहीं चाहते और अधिकार जताते हैं। उन 5-10% लोगों की नेगेटिविटी एक्टिव होने से पूरी कंपनी में स्ट्राइक हो जाता है। 90% लोग तो सीधे साधे आते हैं, अपना काम करते हैं, पगार लेते हैं, पर 5-10% की नेगेटिविटी एक्टिव होने से पूरी कंपनी को असर पहुंचता है। तो अगर नेगेटिविटी 5-10% एक्टिव होने से ये रिजल्ट आ सकता है, अगर हम अपनी अच्छाइयों को एक्टिव करें तो कितना भी खराब वातावरण हो हम इस दुनिया को ठीक कर सकते हैं। पर शुरुआत खुद से करें, और इसलिए पहले हमें स्वयं को ठीक करना है। इसलिए स्वयं को जानने के बाद, अब सही रूप से आपने जान लिया अपने आप को, तो हमारा स्वयं पर अटेंशन हो। तो आपके सामने ये प्रश्न है कि आपको आप कैसे महसूस कर रहे। अक्सर हमें दूसरों की फीलिंग्स नोटिस में आती है कि भाई आज ये खुश नहीं है, आज इनका मूड ठीक नहीं, ये कोऑपरेटिव नहीं है। दूसरों की फीलिंग्स को हम नोट करते हैं लेकिन हमें अपनी फीलिंग्स को महसूस करना है। तो मैं आप में से भी पूछना चाहूंगी कि आप अपने आप को यहां कैसे महसूस कर रहे। फाइन। और लाइफ शांत, हाँ, मच बेटर, शांति, हाँ, टेंशन फ्री, हाँ। तो देखो, यहाँ के पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में और कांस्टेंट इनपुट कौन सा हो रहा है, पॉजिटिव इनपुट हो रहा है, तो फीलिंग्स भी अच्छी है, है ना। वरना ये आपको बताया है कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, है ना, वैरायटी फीलिंग्स अनुभूति में हम होते हैं, पर हमारा अपने पर ध्यान कम होता है ना, दूसरों के ऊपर अटेंशन ज्यादा होता है। पर अगर हमारे नोटिस में आता है, कई बार हम महसूस भी करते हैं कि आज मैं अंदर से शांत रही, व्यक्ति मुख से कुछ नहीं बोल रहा है पर अंदर से बेचैनी फील कर रहा है, है ना, अशांत है, मूड ठीक नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, अंदर अंदर गुस्सा आ रहा है, कुड़ते रहते हैं, है ना। तो यही हमें यहां सीखना है कि कर्म पर फिर भी हमारा ध्यान रहता है कि भाई बुरा नहीं करना, जहां तक हो सके अच्छे कर्म कर ले, पर मनोस्थिति पर हमारा बहुत कम अटेंशन होता है। इसलिए हमें मन की स्थिति, स्वयं की आत्म स्थिति, क्योंकि आत्मा में तीन फैकल्टी है, मन, बुद्धि और संस्कार, और तीनों में हार्मनी नहीं रही। हम सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हमारे सोचने, बोलने, करने में हार्मनी नहीं। सोचते बहुत है पर एक्यूरेट वर्णन नहीं कर पाते, है ना। मन में कई बार आप सोचते हैं कि फलाना आएगा, मैं ये कहूंगा, ये कहूंगा, ये कहूंगा, और उसके सामने जाते हैं, हम पूरा कह ही नहीं पाते स्पष्ट, है ना। कई बार हम बहुत बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। जो नहीं सोचना चाहिए वो बार बार सोचते रहते, और जो चिंतन चलना चाहिए, जैसे आप कल आत्म चिंतन सीखा, आज परमात्मा चिंतन के बारे में सीखा, श्रेष्ठ चिंतन, शुभ चिंतन, जो चिंतन चलना चाहिए वो नहीं चलता। आपने महसूस किया होगा कि 5-10 मिनट भी शुभ चिंतन में, स्व चिंतन में, परमात्मा चिंतन में आपको बिठाते हैं, पर वो चिंतन इतना कर नहीं पाते, मन साइलेंट हो जाता, शून्य हो जाता, शांत नहीं होता, शून्य हो जाता और नींद में चले जाते। व्यर्थ चिंतन पर चिंतन करना हो, तेरी मेरी घंटों तक हम करते हैं, है ना। वो सीखने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है, भाई पर चिंतन कैसे करें, वो सीखने कोई प्रोग्राम में गए आप, हाँ नहीं, हर एक को आता है, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं, किसी को नींद भी नहीं आती। और स्व चिंतन करो, वो बातें सीखने में घड़ी पर ध्यान जाएगा, उसमें नींद आ जाएगी। ये क्या बताता है कि हमें स्व में इंटरेस्ट नहीं, इसलिए हम स्व में स्थित नहीं हो पाते। हमें दूसरों में इंटरेस्ट है, कौन कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, हमें उसमें इंटरेस्ट है, इसलिए उसमें हम आराम से मगन हो जाते हैं। हमें परमात्मा में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए कंप्लेन क्या है, हमारा योग लगता नहीं है, हमारा मन एकाग्र नहीं हो रहा है, भटक जाता है। टीवी देखना हो वहां कैसे एकाग्रता आ जाती, कोई ऐसी बात कोई बता रहा है तो हमारे आंख और कान दोनों कर्मेंद्रियों सहित मन बुद्धि एकाग्र हो जाते। तो एकाग्रता की शक्ति है, पर कहां एकाग्र होना चाहिए वहां नहीं हो रहे हैं, जहां नहीं होना चाहिए वहां हो गए हैं। तो पावर्स तो है, पर कहां करना है वो राइट नॉलेज और वो पावर जो करना है खुद को अभ्यास वो नहीं होता है। इसलिए अगर हम अपनी शांतिपूर्ण जीवन में शांति ऐसे ही अनुभव नहीं हो सकती। कल आपने शांति सत्र में सुना ना कि व्यक्ति शांति के लिए कहीं भी जाती, जंगलों में, तीर्थों में, समुद्र किनारे, हिल स्टेशन पर जब तक प्रकृति की गोद में है कुछ समय शांति अनुभव होता है, वो प्राकृतिक शांति। पर जीवन की वास्तविकता में जैसे ही आते हैं फिर अशांति, क्योंकि हम वास्तव में शांति बाहर नहीं खोजते हैं, हम स्वयं ही शांति, हम ही शांत स्वरूप है, हमारी ओरिजिनल नेचर ही शांति। मुझे इस अवेयरनेस में स्थित होना है। तो जब हम अपनी आत्म स्थिति शांतिपूर्ण बना लेते हैं तो वो स्थिति से ही हमें अधिक स्पष्टता मिलती है, वो एक स्प्रिंग बोर्ड का काम करती है जहां से हमें अधिक क्लैरिटी मिलती है और हमारी मनोस्थिति जो है वो निश्चिंत, बेफिकर, केयर फ्री हो सकती। केयरलेस अलग चीज है, केयरलेस लापरवाह है, पर यहां जो मैं बात कर रही हूं केयर फ्री निश्चिंत मनोवृत्ति का वो एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। इसलिए हमें क्या करना होगा, शांति की स्थिति हम बना सके उसके लिए सबसे पहली चीज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, स्वयं को देखने की आवश्यकता है, स्व निरीक्षण की जरूरत है। आईने में देखेंगे तो पता चलेगा कि कहां क्या ठीक करना है। ऐसे स्व को हम देखें, अपना निरीक्षण करें तो हमें महसूस होगा कि मुझे स्वयं में क्या परिवर्तन लाना है। आपकी ही तरह एक प्रोग्राम में एक मेहमान आए थे, एक सत्र में उन्होंने खड़े होकर हमें ये कहा कि आपकी तरह मेरे पास भी बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे मेरे पास भी आइडियाज है, पर मेरी एक कंप्लेन है कि लोग मुझे सुनते ही नहीं। हम लोगों ने उनको कहा कि आप ऐसा करिए कि आप हमें भी नहीं सुनिए, आप एक सेशन मिस करिए और कैंपस में, गार्डन में शांति से वॉक करके आइए और सोचिए कि आपको कोई क्यों नहीं सुन रहा है। थर्ड सेशन में जब वो वापस आए, बहुत खुश नजर आ रहे थे। हम लोगों ने उनसे पूछा कि आपको अपने प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन मिला, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने पूरा एक घंटा कैंपस में, गार्डन में साइलेंस में वॉक किया और ये गौर किया कि लोग मुझे क्यों नहीं सुनते, मुझे उसका जवाब मिल गया। उन्होंने कहा कि लोग मुझे क्यों नहीं सुनते हैं, क्योंकि मैं ही किसी के नहीं सुनता, मैं ही किसी के नहीं सुनता हूं, क्योंकि मुझे अपना आइडियाज का, अपनी अच्छे थॉट्स और बुद्धि का इतना ईगो है कि मैं दूसरे किसी का कभी सुनता ही नहीं हूं, तो मुझे कोई क्यों सुनेगा। तो ये है शांत आत्म स्थिति से हमें राइट आंसर मिलता है, सही रियलाइजेशन आते। अक्सर आप देखो हम पर दर्शन, अवगुण दर्शन, संसार दर्शन ये सब करते रहते, पर स्वदर्शन अपने आप को देखना, ये जीवन में हमें अभ्यास ही दे। अगर हम अपनी शांत आत्म स्थिति बनाना चाहते हैं तो ये स्वदर्शन करना जरूरी। और जब हमें अपने स्व का सही ज्ञान मिल जाता है कि ओरिजिनली मैं शुद्ध सत्य शांत आत्मा हूं, तो हमें तुरंत समझ में आता है कि मुझे कहां क्या सुधार करना है, मेरी वृत्ति में, दृष्टि में, भावना में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में कहां गलत चीज आ गई है, वो हम तुरंत महसूस कर सकते। तो जैसे ही आप ये स्वदर्शन करना शुरू करेंगे, आपको हर बात अधिक स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए साइकोलॉजी कहती है कि कोई भी बात सुनने के बाद, मान लो कोई भी सब्जेक्ट पर आप सुनते हैं, कोई लेक्चर सुनते हैं, क्लास सुनते हैं, उसके बाद अगर आधा घंटा आप साइलेंस में रहते हैं, तो जो कुछ सुना उस पर गौर कर सकेंगे, उसको रिवाइज कर सकेंगे और आपको काफी स्पष्ट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा और आप इजीली धारण कर सकेंगे। तो जैसे ही आप ये अभ्यास करते, क्योंकि जब स्वदर्शन करना है तो नेचुरली मुझे स्व के प्रति फोकस होना है और दूसरों से कुछ क्षणों के लिए मुझे डिटैच होना है। तो यहां क्लैरिटी हो जाएगी और जैसे ही क्लैरिटी होगी, अंदर से पॉजिटिविटी उत्पन्न होगी। आप देखना, शुभ विचार हमें अचानक क्लिक होते, व्यर्थ विचार बहुत स्पीड से चलते, पॉजिटिव थॉट रेयर अचानक क्लिक होते। तो जैसे ही हम स्व में और खुद की स्थिति में जाते हैं, तो हमारी ओरिजिनलिटी तो पॉजिटिव ही है। पॉजिटिविटी जो है वो वास्तविक है, नेगेटिविटी इज फॉल्स। नेगेटिविटी कोई चीज ही नहीं है, पॉजिटिविटी की एब्सेंस को ही नेगेटिविटी कहते हैं। इसलिए पॉजिटिविटी इज स्ट्रॉन्गर देन नेगेटिविटी। अपने आप हमारे में सकारात्मकता आने लगी और मन पॉजिटिव बनने से हम अपने में रिलैक्स महसूस करेंगे। कोई भी परिस्थिति, बात, कुछ भी सामने आया, जब आप शांत मन से ऑब्जर्व करते हैं, आपको राइट टचिंग आएगी, क्लैरिटी होगी, राइट डिसीजन आप ले सकेंगे, उनको सहज पार कर सकेंगे। तो मैं आप सब में से पूछना चाहूंगी, आज सुबह आप कितने बजे उठे हैं? हाँ, बहुत जल्दी उठ गए। हाँ, अब समझो आप 5 बजे भी उठे, 4 बजे उठे और 12 बजे, आपको जागृत स्थिति के कितने घंटे हुए? 7-8 घंटा हो गए, है ना? 7-8 घंटे में कितने थॉट्स मन में आए होंगे? मेडिकल साइंस तो कहता है ना कि प्रति 2 सेकेंड एक विचार मन में उत्पन्न होता है। व्यक्ति 1 मिनट में 20 से 30 विचार कर लेती है। उस हिसाब से आपने 8 घंटे में 8-10 हजार विचार मन में उत्पन्न किए हैं। तो आज का पॉजिटिव थॉट आपका क्या रहा? कौन बताएगा? आज का पॉजिटिव थॉट क्या रहा जो आज आपका रहा हो, वो ही बता। शांत रहना है और स्व परिवर्तन करना, स्वयं की जिम्मेवारियों को समझना है और बहुत अच्छा प्रेम भाव, सबके साथ प्रेम भाव रखना। वो देते रहे, आप क्या करेंगे? पावरफुल बनकर। तो आज का ये तो आपका स्वयं तक रहा, बेशक शुरुआत स्वयं से है, पर जब आपका वो स्टेज बन जाएगा, फिर आपको हर बात, हर व्यक्ति, हर सिचुएशन के प्रति पॉजिटिव ही रहेगा। अपने आप जब स्वयं के लिए शुरू हो गया तो स्वयं के लिए होगा, फिर ऑटोमेटिक हमें सर्व के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड, थॉट, वाइब्रेशन, भावनाएं ऑटोमेटिक हमारी रहेगी। इसलिए हमें क्या करना है कि जैसे एक मोटर गाड़ी है, उनको हमें सावधानी पूर्वक ढंग से चलाना है, तो हमें उसके स्पीड पर योग्य कंट्रोल रखना चाहिए, है ना? देखो, एक्सीडेंट होते हैं, बहुत फास्ट चलाते हैं, बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर थोड़ा भी कंट्रोल से चलते हैं तो भले एक्सीडेंट कभी हो भी जाता है, पर इतना नुकसान नहीं होगा, है ना? बचने की मार्जिन रहती। इस प्रकार अगर हम भी अपने जीवन को सही दिशा में ठीक चलाना चाहते हैं, तो तो हमें भी अपने मन की गति को ठीक करना होगा। अब जब नेगेटिव सोचते हैं कितनी फास्ट गति हो जाती है। आपको अनुभव होगा जब आप टेंशन में हैं, भय में हैं, चिंता में हैं, तो विचार की स्पीड कितनी फास्ट हो जाती है। पॉजिटिव सोचते हैं तो मन की काम एंड कूल स्टेज बनती जाती है। इसलिए शांति इसलिए जरूरी। फोकस होने के लिए भी मन में शांति चाहिए। देखो जिस दिन आप प्रोग्राम में कोई क्लास में आने में लेट हो जाते हैं और आप फास्ट चल के और मन में भी जल्दबाजी होती है, लेट हो गए है ना, उस टेंशन में आते हैं, तो आते ही शांत हो पाते अपने आप को, चाहे श्वास की गति फिजिकली और बाद में मेंटली शांत होने में टाइम लगता है ना। इसलिए अगर हम जीवन में पहले से ये प्रैक्टिस बनाए, जैसे कई भाई बहने जब हमें कहते हैं ना कि हम जब उनको कहेंगे भाई आप आइए रोज योग करिए ज्ञान सुनिए, तो कहेंगे बहन जी अंत में देख लेंगे हाँ, जब अंत में, क्योंकि समझते हैं ना विनाश होना है, विनाश के टाइम हम योगी बन जाएंगे हाँ, पर उस समय योगी बन सकेंगे हा? आज जब खास बैठ के मन लगाने का प्रयास करते हैं तो भी हम शांत नहीं हो पा रहे, उस समय हम कैसे हो पाए। इसलिए मन की गति और दिशा दोनों को हमें ठीक करना। दिशा गलत हो गई है चिंतन की, नेगेटिव हो गई है, इसलिए गति भी फास्ट। आज हर इंसान मन से दौड़ रहा है ना, भले बैठा है घर में, दुकान में, ऑफिस में, पर मन से क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, है ना, दौड़ रहे हैं, क्योंकि इतनी इच्छाएं हैं, इतनी कामनाएं हैं कि इंसान मन से दौड़ रहा है। उनको रात ही रात में मल्टी मिलियनर बन जाना है। अब आप बताइए मन से दौड़ना नेचुरल है कि चलना नेचुरल है? चलना नेचुरल होता है कि दौड़ना नेचुरल होता है? चलना नेचुरल है, और हम मन से क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। फिर कहां हमें शांति रहेगी, इजीनेस रहेगा, सहजता कैसे रहेगी? मेडिटेशन यही कार्य करता है कि वो मन को सही दिशा में सही गति से चलाता है। सही दिशा आने से गति अपने आप सही हो जाती है। तो एक अपनी ही तीन योग्यता के अंदर हमें शांतिपूर्ण तालमेल बनाने की आवश्यकता, जो हमारी तीन विशेषताएं, सोचना, समझना और कर्म करना, हमें उसमें ही तालमेल लाने की आवश्यकता है। अब सबसे पहला है मन, फिर है शब्द, मन, वचन और कर्म। अगर हम मन में शुभ भावना लाते हैं, शुभ भावना, चलो आप और किसी को धन साधन कुछ भी नहीं दे सकते, शुभ भावना रख सकते हैं, उसमें तो कोई खर्च नहीं है, पर आप देखो हमारी एक दो के प्रति भावनाएं कैसी। अगर मन में शुभ भावना आएगी, रिजल्ट क्या होगा, वायुमंडल वाइब्रेशंस जो है वो सुखद बन जाए। अगर हमारी किसी व्यक्ति के प्रति भावना अच्छी नहीं है तो वहां हमें अच्छा नहीं लगेगी। तो एक अभ्यास रोज जाप करें, सुबह उठते हैं स्वयं के लिए शुभ भावना, मैं निकम्मा हूं, कोई काम का नहीं हूं, कुछ आता नहीं है, भाग्य ऐसे नहीं, खुद के लिए शुभ भावना। जिन साथियों के साथ हम जीते हैं रहते हैं परिवार के लिए शुभ भावना। बताएं ना, हमारी भावनाएं बिगड़ती कहां हैं? जिनको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेना देना नहीं, उनके लिए तो मन अच्छा ही रहता है ना। पर जिनके साथ दिन रात रहते हैं, काम करते हैं, एक दो के स्वभाव संस्कारों के परिचय में आते हैं, वहां ही तो भावनाएं बिगड़ती हैं। परिवार के लिए शुभ भाव। आप अपने ऑफिस में जाते हैं, एक मिनट कुर्सी पर शांति से बैठिए और पूरे ऑफिस के वायुमंडल और कर्मचारियों के लिए शुभ भाव। हमारे एक व्यापारी भाई ने हमें बताया कि बिजनेस की जिस गद्दी पर बैठकर हम बिजनेस करते हैं, कई बार लोग अपने ही बिजनेस को कोसते रहते हैं, वो कभी सफल नहीं। जिस गद्दी पर बैठकर जिस बिजनेस से आप कमा रहे हैं, अच्छी भावना दें, शुभ भावना दें, तो हमें अच्छा परिणाम मिलेगा। तो सभी खड़े हो जाएंगे, ये मेंटल एक्सरसाइज है, खड़े हो जाए। सबसे पहले स्वयं के लिए शुभ भावना करेंगे। आपको मन में वो थॉट रिवाइज करना है, मैं भगवान का बच्चा हूं, मन में खुद खुद के लिए, मैं ईश्वरीय संतान, मैं विशेष आत्मा हूं। इस विश्व नाटक में मेरा यूनिक रोल है, मैं अवश्य जो कुछ मुझे मिला है उससे अनेक गुना अच्छा करके बताऊंगा। अब राइट साइड घूम जाइए, मेरे राइट साइड जितनी भी आत्माएं हैं, मेरी सबके प्रति शुभ भावना है। ये सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सुसंस्कार कारी रहे। अब सामने हो जाइए वापस, लेफ्ट साइड घूमिए, मेरे लेफ्ट साइड जो भी आत्माएं हैं वे भी भगवान के बच्चे, वे भी समझदार गुणवान आत्माएं हैं। मेरे अंतर की शुभ भावना है ये सब शांति, सुख, अमन, चैन के जीवन को प्राप्त करें। सामने हो जाए, नीचे देखें, इस धरती, इस स्थान, पृथ्वी का भी बहुत शुक्रिया, जिस पर मेरा अस्तित्व है। मां धरती फल फूल उगाकर हमारी आवश्यकताएं पूर्ण करती, ये हरी भरी फली फूली रहे। ऊपर देखें, मैं ऊपर वाले का भी बहुत शुक्रगुजार, उसकी कृपा नजर, दया दृष्टि, उनका प्यार सदा हम पर बरसता है। मैं अवश्य उनका अच्छा रिटर्न करूंगा। बैठ जाए, हमारे शब्दों में अगर प्रशंसा हम भरे, प्रशंसा चापलूसी नहीं, प्रशंसा योग्य शब्दों में, उनके योग्य कार्यों पर एप्रिशिएट कर, तो हमारे संबंध प्रभावी बन जाए, हमारे सबसे अच्छे संबंध बन जाए। अगर हम कटु बोलते हैं, व्यंग कसते हैं, अवगुण की बात करते हैं, तो लोग हमसे जुड़ना नहीं चाहे, हमसे दूर हो जाए। गुस्सा करते रहते हैं, हम दूसरों का प्यार नहीं पा सके। पापा गुस्सा करता है तो घर में शाम को आएंगे, घर में जो भी होंगे दूसरे कमरों में भाग जाएंगे, क्योंकि आते ही गुस्सा करेंगे तो दूर हो जाते हैं। हम गुस्से से दबा सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते, दिल नहीं जीत सकते। एप्रिसिएशन, छोटा भी कुछ अच्छा करते हैं एप्रिशिएट। यहां जो भी डिपार्टमेंट संभालने वाले भाई बहने, कोई प्रोफेशनल नहीं, अपनी इतनी विशेषता सेवा में लगाई, दादियों ने उनको मार्जिन दी, करो अच्छा है अच्छा है। आज इतने बड़े बड़े कैंपस के कारोबार को वो लोग संभालने लगे, जिसकी जो अच्छाई है उससे उनको आगे बढ़े, हमारे रिलेशन अच्छे बन जाए, उनकी विशेषता देखें, विशेषता का वर्णन करें। इसमें कोई कपल है, पति पत्नी आए हैं, नए मेहमान, एक कपल आ जाओ, ये सामने बैठे, आप आ जाओ। कोई सास बहु आए हैं, देरानी जेठानी आए हैं, कौन है, आइए आइए, दो दो सास बहु आए हैं तो आइए, आ जाओ आ जाओ आओ। एक ही कंपनी में, एक ही डिपार्टमेंट में साथ काम करने वाले आए हैं, तरफ चेहरा करके खड़े रहो। हाँ, आप इधर आओ बहन जी, आप और दोनों इस तरफ, सास और बहू सिर्फ दो आएंगे, ये चार कैसे हो गए, नहीं सास बहू सिर्फ आओ, बाकी के बैठ। एक ही डिपार्टमेंट में बॉस हैं और उनके अंडर हैं या कलीग्स हैं, कोई है ऐसे, हाँ, बिजनेस में पार्टनर हैं, आइए ये दो लोग आ जाए, बस आ जाए, इनको माइक देना है। पहले ये कपल को दीजिए, इस तरफ आ जाइए थोड़ा, हाँ आप भी इधर आ जाइए, हम वन बाय वन बुलाएंगे। अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं वो बताइए।
मेरा नाम सीमा शर्मा, मैं आदिलाबाद आंध्र प्रदेश से आई हूँ।
आदिलाबाद,
हाँ जी।
अच्छा, भाई साहब को दीजिए।
तरसेम कुमार शर्मा, आंध्र प्रदेश आदिलाबाद से आया हूँ।
क्या नाम?
तरसेम कुमार शर्मा।
हाँ,
तरसेम कुमार शर्मा।
अच्छा, मैं आपसे चाहूंगी कि आप बहन जी की क्या विशेषता है ये बताइए।
ओम शांति, जैन कर, 2 महीने हुआ है अभी इनको जैन करके।
जीवन तो कितने सालों से है, उनकी क्या विशेषता है, अच्छाई क्या है वो बताइए।
अच्छाई भगवान में ज्यादा ये रखती है,
भक्ति भाव,
भक्ति भाव ज्यादा है।
और आपके संबंध में क्या अच्छाई है?
हमारा कभी झगड़ा ही नहीं हुआ।
हाँ,
झगड़ा कभी हुआ ही नहीं हमारा दोनों का,
हमारा बहुत प्यार और शांति है ना।
हाँ जी,
बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आप बहन जी को दीजिए। बहन जी, आप भाई साहब में क्या विशेष गुण है ये बताइए।
ये इनकी इतनी अच्छी विशेषता ये है कि इतने होनेस्ट है और सबकी भलाई करते हैं। हम जिंदगी में 20 साल हो गए, कभी आपस में झगड़ा नहीं करे।
वाह भाई वाह।
और घर में भी बहुत शांति है, हमारे घर में 5 मेंबर है, हम बहुत शांति है बिल्कुल।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उनको दीजिए, दो भाई हैं, आप बैठ जाइए।
ओम शांति, मैं धर्मपाल चावला फतेहाबाद से आया हूँ, हरियाणा से। हम दोनों लोग इकट्ठे ही आए हैं, इकट्ठे ही काम करते हैं।
अच्छा, आपके पार्टनर की क्या विशेषता है?
मैं इनको 2-4 साल से तैयार कर रहा था, ये आ नहीं रहे थे। मैं कहा एक बार अगर आज
विशेषता बता दे बिजनेस में आपस में क्या उनकी विशेषता।
मैं वही कह रहा हूँ, मैं एक बार अगर आ जाए तो इनमें जो कमियां हैं वो सारी ठीक हो जाए।
कमी नहीं पूछ रही हूँ, विशेषता बताइए।
विशेषता, विशेषता वैसे तो ये बहुत मिलनसार मतलब है, सेवा में लगे हुए हैं, सेवा शहर में करते ही रहते हैं दूसरी संस्थाओं में,
मिलनसार है।
हाँ जी, हाँ जी।
और सेवा भावी।
हाँ जी, हाँ जी।
और आपके रिलेशन में क्या विशेषता है?
मेरे में
आपके संबंध हाँ। में उनकी क्या विशेषता?
नहीं, बहुत अच्छे है मेरे, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, इनकी सेवा करते हैं समाज की।
उनको दीजिए, खड़े रहिए साथ में।
राम कुमार मंगल फतेहाबाद से आए हरियाणा से। और ये
भाई की विशेषता बताइए।
ये मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, योग हम साथ जाते हैं, एक ही सॉरी से हम
साथ जाते हैं क्या?
हाँ, योगा में।
और उसमें क्या गुण है, बिजनेस में क्या अच्छाई है?
ये सामाजिक आदमी है और समाज में यानी अच्छे सेवा भाव रखते हैं।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ,
ओम शांति।
साथ में रहो।
मैं दीपा पंत चंडीगढ़ से आई हूँ।
हाँ, और आपके सास की विशेषता क्या है, अच्छाई क्या है?
मेरी सास बहुत मिलनसार हैं, वो सबके साथ हंसकर बात करती हैं, मुझसे भी हंसकर बात करती हैं, जब कभी हमारे झगड़ा भी हो जाता है तो मना भी लेती हैं।
अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, माता जी आप बताओ।
मेरे बहू में तीन हैं, बहुत अच्छी हैं, मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मेरे बेटे भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मैं अपने बेटों से बहुत खुश हूँ, अपने परिवार से मुझे बहुत खुशी है।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, जब एक दो की विशेषता का वर्णन करते हैं, पहला युगल आपने देखा तो चेहरा कैसा होता है, जब विशेषता का वर्णन करते हैं तो चेहरा कैसा होता है? खुश, खुश मिजाज होता है। वहीं अगर हम एक दो की कमी बताएं तो हमारी फीलिंग्स क्या होती है एक दो के लिए? नफरत है ना, घृणा, नाराजगी की होती। तो गुणों को देखें और गुणों से संबंध चलाएं तो हमेशा एक दो के लिए बहुत अच्छी फीलिंग रहेगी, है ना। अगर मन में फीलिंग्स प्योर नहीं है तो भी हम अपने आप को ठीक महसूस नहीं करेंगे, है ना। मन में जो एक दो के लिए कलह क्लेश भर के रखते हैं ना, इसलिए हम मन को शांत नहीं कर पाते। अब दो पार्टनर से पूछा, वो तो ऐसे लगा जैसे आज ही एक दो को जान रहे। तो देखो, इतना हम साथ रहते हैं और हमें एक दो की विशेषता का ही पता नहीं है ना। हमें एक दो की विशेषता, गुण, अच्छाई हमारे नजर में आनी चाहिए तो हमारे रिलेशन सहज इजी होंगे, साथ काम करना अच्छा होगा। बताया ना, लोग साथ काम करते हैं लेकिन प्लेजर से नहीं करते हैं, प्रेशर से करते हैं। तो विशेषता, और दोनों सास बहू ने भी बताया, तो अच्छाई बहुत खुशी के साथ हम बता सकते हैं। पर अक्सर अवगुण देखने का ही अभ्यास है, इसलिए अच्छाई बताओ ये कहने के बाद भी बार बार कमी के तरफ ही शब्द जाते रहे, है ना, कि ये यहां नहीं है ना? हर इंसान में आप ज्ञान में आओ नहीं आओ, योग करो नहीं करो, वो बात बाद में है। मनुष्य मात्र में वो कितना भी कलयुगी हो, उसमें एक विशेषता जरूर हो। कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं जिसमें विशेषता ना हो, क्योंकि हम हरेक भगवान के बच्चे। ओरिजिनली हर आत्मा सत्य है, शुद्ध है, इसलिए कोई एक विशेषता भी जरूर होगी। वो विशेषता हम ढूंढें और उससे प्यार करें, रिस्पेक्ट दें, वो विशेषता और जागृत होगी, अनेक विशेषताओं को ले आएगी। जैसे एक बुराई अकेली नहीं आती है ना, अनेक बुराई साथ में ले आते, वो चेन होता है। ऐसे अच्छाई एक नहीं आती, एक अच्छाई के साथ अनेक अच्छाई हमारे में, तो वो हमारे ध्यान पर रहे, चिंतन में रहे, वर्णन में भी वो ही आवे, तो हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस प्रकार हमारे कर्म व्यवहार में स्टेबिलिटी, स्थिरता, स्थिरता। ऐसे नहीं घड़ी घड़ी हम रंग बदलते रहे, ऐसे नहीं। कहते ना ईश्वर को पहचानना आसान है, क्योंकि वो अपने गुणों में सदा स्थित है, सदा स्थित है। इसलिए हम सदा शिव, सदा पावन, सदा मुक्त उससे कहते। इसलिए लोग कहते हैं ईश्वर को पहचानना आसान है, क्योंकि वो अपने गुणों में स्थिर है। इंसान को पहचानना बड़ा मुश्किल है, वो हर घड़ी अपना रंग बदलता रहता है। पर अगर हम अपना कर्म व्यवहार में स्थिरता लाएं, स्टेबिलिटी लाएं, संयम रखें, छोटी छोटी बात में गुस्से होते रहे, छोटी छोटी बात में नाराज होते रहे, छोटी छोटी बात में दुखी होते रहे, मूड ऑफ करते रहे, तो हम अच्छे नहीं लगेंगे, प्रिय नहीं लगेंगे। पर अगर हम अपने गुणों में, कर्म में स्थिरता लाते हैं, तो हमारे में कैसी भी परिस्थितियों को फेस करने की योग्यता है। जो व्यक्ति बहुत जल्दी अपसेट हो जाता है ना, वो परिस्थिति को फेस नहीं कर सकता। जो स्थिर रहता है, शांत रहता है, धीरज रखता है, उतावलापन नहीं, जल्दबाजी नहीं। उतावलापन जल्दबाजी क्यों है? अंदर शांति नहीं है, धीरज नहीं। अगर वो गुण है, आप कितनी भी कड़ी परिस्थिति होगी, आप उससे फेस कर सकते, क्योंकि शांत मनोस्थिति और कर्म व्यवहार में एक रस्ता रहने के कारण आप अच्छा रेस्पॉन्ड कर सके, लोग विश्वास करें। तो ये हमारे व्यक्तित्व में हमें हार्मनी लानी है। हम समाज की बात करते हैं कि समाज में हार्मनी नहीं, पर इसका कारण यही है कि हमारी पर्सनालिटी में हार्मनी। जैसे बताया है कि कुशन, डनलोप के अच्छे कुशन हमें आरामदायक बैठक का अनुभव कराते हैं। आप कहते हैं बहुत अच्छी कुर्सी है, आरामदायक, अगर वही हार्ड हो आप ठीक से महसूस नहीं करें, है ना। आपकी कार में अच्छी गद्दियां हैं, स्प्रिंग नीचे लगी है, तो कितने भी जर्स आते हैं आप उछलते रहे, ठीक से बैठ पाते। तो ये जो हमारी आंतरिक शांति की स्थिति, गुणों से भरी हुई स्थिति जो है, वो कैसे भी ऊपर नीचाई में, अपहिवल्स में, हलचल में हमें आसानी से पार कर सकेगी। ये एक्सरसाइज हम छोड़ देते हैं। इसलिए जब हम शांत स्थिति से मूल्यों के साथ व्यवहार करेंगे, कार्य करेंगे, अपने गुणों से एक दो को सहयोग देंगे, तो आप अनुभव करेंगे कि हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं, कोई भी परिस्थिति का निवारण हम ला सकते हैं, हम एक एग्जाम्पल बन सकते हैं, हमें टेंशन नहीं होगा, हम आसानी से काम पूरा कर सकेंगे और अच्छी तरह से हम एक दो से सीख सकेंगे, एकाग्रचित्त हो सकेंगे। तो मूल्यों के साथ कारोबार करने से, भाई चार पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं पर चारों ही अपने अपने वैल्यू को लेकर कंट्रीब्यूट करें, सिर्फ स्किल नहीं, सिर्फ जमीन साधन पैसे का नहीं, पर गुणों से भी अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। वो चार मिलकर इन ये सारी परिस्थितियों को पार कर सकते हैं। तो आप विद्यालय में इस ज्ञान योग के अभ्यास से अनेक बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने जीवन में बहुत प्राप्तियां हैं, बहुत अच्छे अनुभव हैं। इसमें से एक एग्जाम्पल आज मैं आपके सामने लाना चाहती हूं। मैं चाहूंगी कि भाई सिंह भाई नाम है, खुद अपना परिचय देंगे। बेसिकली वैसे बिहार के हैं पर बॉम्बे में सेटल हुए हैं, वहां ही उनका बहुत बड़ा उद्योग है। वो खुद सारा डिटेल बताएंगे कि कब से आप विद्यालय के संपर्क में हैं और इस ज्ञान योग का अध्ययन करने के बाद पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और फैमिली लाइफ में आपका क्या अनुभव रहा है वो बताएंगे।
ओम शांति। तो दीदी जी ने मेरा परिचय तो करीब दे ही दिया। शरीर का नाम हुआ शशिकांत सिंह। वैसे हमारा नेटिव बिहार हुआ। बॉम्बे में करीब 30 वर्षों से अपने व्यवसायिक जीवन में है। आपकी बिरादरी से बिलोंग करते हैं। आपकी बिरादरी क्या है? बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो हम आपकी बिरादरी से बिलोंग करते हैं। आपके आप जिस हिसाब से इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, इसी प्रकार से मेरा भी 2000 में आना हुआ। उसके पहले तो मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्था का कोई ज्ञान नहीं था, कोई परिचय नहीं था। बॉम्बे में हमारी माताजी जो हमारे ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र होते हैं सभी शहरों में, वहां जाती थी क्लास में। कई भी हमने पता किया कि माताजी कहाँ गायब रहती है दोपहर को जब भी मैं घर पे आता हूं, तो पता पड़ा कि कहीं सत्संग में जाती हैं। अच्छा कार्य है। उन्होंने एक बारी हमारे बेडरूम में एक शिव बाबा का गुणों वाला चित्र है। शिव बाबा की क्या विशेषताएं हैं वो चित्र हमारे बेडरूम में लाके लगा दिया। माता है, भावना रही होगी कि शायद बच्चे का भी बुद्धि खुल जाएगा। मैंने उसे पढ़ा, पढ़ने के बाद जो मन में भाव आया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। नीचे में लिखा हुआ था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब हमारे समाज में, इस दुनिया में ऐसी संस्थाएं कितनी हैं, आध्यात्मिक संस्थाएं किस किस नाम से चल रही है, क्या कारोबार हो रहा है, हम सभी उसके अनुभवी हैं। तो हमारे मन में भी ये विचार आया कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी माने कोई ऐसी कुमारी होगी, सन्यासी होंगी जो अपने आप को ब्रह्मा की कुमारी का बेटी कहती होंगी और ऐसी कोई संस्था चला रही है, खाने कमाने का अपना जरिया है। तो मुझे उससे कोई प्रेरणा नहीं मिली। उसके बाद मैंने वो चित्र को, जिससे मुझे ओवर लगा, मैंने उसको देखना ही छोड़ दिया। लेकिन जब ही हम माउंट आबू में आए और इसी प्रकार से चार दिन का कॉन्फ्रेंस था, हमने अटेंड किया, तो ऐसा एक दिल से आवाज आया कि मुझे वो सब मिल गया जो मुझे चाहिए था। आपको बताऊं, आज 2000 से हम रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए सेवा केंद्रों पे जाते हैं। जो भी संस्था का नियम है उसे जीवन में पालन करते हैं। लेकिन उसके पहले हमारे जीवन में मैं थोड़ा उस पर रोशनी डालना चाहता हूं कि हमारे क्या प्रश्न होते थे। एक बात, जैसे हम देवी देवताओं के बारे में सुनते थे या जानते थे, भगवान क्या है, कहानियों में रामचंद्र की बारे में जो जीवन कहानी जानते हैं, जिसे हम भगवान स्वरूप मानते हैं, दुनिया मानती है, तो वो कहानियों में मुझे बहुत प्रश्न होता था कि सच में भगवान है कौन। अगर श्री रामचंद्र जी भगवान हैं और उनकी पत्नी को रावण चुरा के ले जाता है, आज घोर कलयुग है तभी भी ऐसा सुनने को नहीं मिलता है कि किसी राष्ट्रपति की पत्नी को कोई चुरा के लेके गया, क्योंकि उनके पीछे इतनी सारी सिक्योरिटी है, सारी व्यवस्था है। और जो स्वयं भगवान स्वरूप थे, उनकी पत्नी को कोई चुरा के ले गया, और भगवान तो क्या कहते हैं, नहीं वो भगवान की लीला थी। अब ये भगवान की लीला, ऐसी लीला जो हमें भ्रमित करे, हमारे मन में प्रश्न छोड़े, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, तो इन सब चीजों से काफी प्रश्न होता था। संस्कारों में भक्ति मिली थी, घर परिवार में पूजा पाठ होता है, अच्छा लगता है, कहीं भी मंदिरों में जाना अच्छा लगता था। लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी कि भगवान के सामने जा करके उससे कुछ मांगना। जैसे मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पता नहीं क्या क्या मांगते हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। मैं कभी भगवान से मांगता नहीं था। लेकिन जब ये ज्ञान हमें मिला, तो जैसे मैंने कहा कि मेरे दिल से ये भाव आया कि मुझे जो चाहिए था वो सब मिल गया। क्योंकि यहां का जो अभी तक आप लोगों ने दो दिन के सेशन में आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, और भी आगे दो दिन के क्लासेज में काफी कुछ सुनेंगे, तो ये मूल पता पड़ा कि परमात्मा कौन है। हमारा पिता है। अब पिता के पास कोई चीज है और बच्चे को चाहिए, तो क्या उसे भिखारी के जैसा मांगना पड़ेगा? जो बाप का है वो बच्चे का है ही, तो मांगने की तो जरूरत ही नहीं है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरी बात, सत्य भगवान का परिचय। आज देखो, कोई भी बड़ा व्यक्ति है, कोई मिनिस्टर है, कोई ऑफिसर है, उसका बच्चा जाता है मिलने के लिए, तो उसे कोई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। भले किसी दूसरे डिपार्टमेंट का मिनिस्टर अगर प्राइम मिनिस्टर को मिलने जाए तो भी उसको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन उसका बेटा जाए तो क्या कहेगा उनका गार्ड, साहब का बच्चा है, उसे मिला दो। तो ऐसे भगवान से अगर कुछ पाना है तो हमें उसका बच्चा बनना है, उसका जो डायरेक्शन है वैसा हमें जीवन में फॉलो करना है। तो जो उसका है वो हमारा है ही, ये हमारी बुद्धि में एकदम जैसे फिट बैठ गया। दूसरी एक बात, जैसे यहां पे आपको बताया जाएगा यज्ञान में हमने जो प्राप्त हुआ कर्मों की फिलॉसफी, आज हमारे जीवन में जो भी कोई सुख है, प्राप्ति है, या समझो कभी किसी प्रकार का दुख आता है, तो पहले क्या कहते थे कि भगवान ने ऐसा दे दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया। अरे भगवान की महिमा है कि वो सुख दाता है, दुख हरता है, उसके गुणों में ही ये शब्द नहीं है कि वो किसी को दुख देता है, वो कैसे दुख दे सकता है। तो ये समझ में जब आया कि आज जो भी हमारे जीवन में प्राप्त है फलों के रूप में, चाहे वो दुख है या सुख है, परिवार है, कुछ भी है, ये सब हमारे कर्मों का फल है। भगवान क्या करता, भगवान हमें सिर्फ नॉलेज देता है कि किस राह पे चलना है, क्या करोगे तो क्या होगा। सत्य राह पे चलेंगे तो फल अच्छे मिलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल निकलेंगे। कर्म एक बीज है, जैसे आम का बीज डालेंगे तो आम मिलेगा, भगवान को पूछना पड़ेगा उसमें से आम निकलेगा कि इमली निकलेगा, आम ही निकलेगा। तो जब ये बात समझ में आई कि जो हमें अगर जीवन में रिस्पेक्ट चाहिए, हमें कोई सफलता चाहिए, तो पहले हमें उसका बीज बोना पड़ेगा। तो ये सब जब ज्ञान हमें प्राप्त हुआ इस चार दिन के कॉन्फ्रेंस में, तो जैसे लगा मन में एक निश्चिंतता आ गई और आगे के लिए एक विजन आया। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारा प्रोफेशन है इलेक्ट्रिकल में, हम लोग ट्रांसफार्मर बनाते हैं, जैसे आप देखते हैं रोडों पे फैक्ट्रियों में जो ट्रांसफार्मर लगते हैं वो ट्रांसफार्मर बनाने की फैक्ट्री है, और भी इलेक्ट्रिकल में कई मैन्युफैक्चरिंग के आइटम्स हम लोग पैनल्स आदि बनाते हैं। तो उस समय हमारे फैक्ट्री में या बिजनेस में जो भी स्टाफ थे, तो उन्होंने व्यवहार से हमें थोड़ी असंतुष्टता होती थी, एक स्ट्रेस होता था, इन्हें कैसे ठीक रखा जाए ये हमारे लिए एक प्रश्न था। जैसे बड़ी बड़ी हम इंडस्ट्री में देखते हैं कि हजारों लोग काम करते हैं, उसके पीछे कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए, हमारा छोटा बिजनेस है तो हम तो वो सब चीजों को इतना एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और करते भी हैं तो वो रिमेडी जो है वो हमें परमानेंट सॉल्यूशन के रूप में नहीं लगता था। हमें एक ऐसी पद्धति की खोज थी जिसे हम अप्लाई करें तो और वो ऑटोमेटिक काम करता रहे। तो प्रैक्टिकल रूप में जब हम माउंट आबू आए, उस समय करीब 6000 लोगों की गैदरिंग थी, हमने देखा कि हर 2400 घंटा खाने की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था जो आप भी प्राप्त कर रहे हैं, कहीं कोई विघ्न नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। तो ये अच्छा लगा और इससे सीख मिली कि सचमुच ये चलता कैसे है। तो जैसे भी ये पता पड़ा, आत्मा का ज्ञान मिला कि कोई भी शरीर में चलाने वाला कौन है, आत्मा है। गाड़ी चाहे कैसी भी है, सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर अच्छा चाहिए, नशे में नहीं हो, उसका संस्कार अच्छा चाहिए। तो ये भाव आया कि हमारे बिजनेस में भी जो भी लोग काम करते हैं है तो भी आत्मा, अब किसी का संस्कार कुछ कैसा है कुछ कैसा है, तो जरूरत किस बात की है, उस ड्राइवर के संस्कार को ठीक करने की जरूरत है। ये बात हमारी बुद्धि में एकदम फिट बैठ गया। अब वो ठीक कैसे होगा, यहां क्या करते हैं कि ऐसे सब कुछ काम ऑटोमेटिक चल रहा है, कोई किसी को ऑर्डर नहीं देता है, वो है हमारा मेडिटेशन। तो यहां से जाने के बाद में सबसे पहला काम जो हमारे जीवन में इस आध्यात्मिक यात्रा का शुरुआत हुआ, वो हुआ कि हमने फैक्ट्री के अंदर में बाबा का एक मेडिटेशन रूम बनाया, अपने घर में एक बनाया। अब आप देखना इसका कैसे हमें फायदा पहुंचा। पहले हमने मेडिटेशन कोर्स किया, पूरा 7 दिन का जो कोर्स होता है सेंटरों पे कराया जाता है, हमने मेडिटेशन शुरू किया, हमारे सभी स्टाफ को मेडिटेशन का कोर्स करवाया, मैं रोज खुद मेडिटेशन करता था, सुबह ऑफिस में गए तभी भी, शाम को निकलने के समय, दिन में भी दिल हुआ बैठते थे, उन्हों को भी प्रेरित करते थे कि आप भी करो। तो चूंकि उन्होंने हमारे पास्ट को देखा हुआ था, थोड़ी निगेटिविटी हमारे बारे में उनके दिल में थी, तो उसको उन्होंने दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दिया तो सभी कोर्स किया, थोड़े दिन तक किए भी, बाद में आस्ते आस्ते सब कम हो गए। हमें समझ में आया, जो हमारी मुरली चलती है, बाबा की मुरली जो रोज हम सुनते हैं, कि इन्होंने हमारे पास्ट को देखा है, अभी तक इनके मन में बुद्धि में हमारा पास्ट बैठा हुआ है। इन्हें ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये से करने से कुछ अच्छा भी हो सकता है, या हमसे ये कुछ फायदा लेना चाहते हैं, इसलिए हमको इसमें प्रेरित कर रहे हैं। तो हमने बाबा का जो स्लोगन है कि स्वचिंतन से होता है स्वपरिवर्तन, और स्वपरिवर्तन से होता है विश्व परिवर्तन। तो हमें ये समझ में आया कि जब तक इन्हें हमारा जो पास्ट है वो चेंज हो गया है, और अभी कुछ अच्छा मेरे अंदर परिवर्तन आया है, ये जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब तक इस रास्ते पे नहीं चलेंगे। तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन हमने अपनी प्रक्रिया को नहीं छोड़ा। 6 महीना जैसे जैसे समय बीतता गया, आप बिलीव करेंगे कि सभी आस्ते आस्ते मेडिटेशन से जुड़ गए। जिस ऑफिस में पहले मैं सुबह 8:30 बजे जाता था, रात को 11 भी बज जाते थे, तभी भी लगता था कि कुछ काम बाकी है, एकदम सर पे कुछ बोझा लेके घर पे जाते थे, उसी ऑफिस में अभी हम 11:30 बजे जाते हैं, 5-6 बजा की लगता घर जाना चाहिए, या सेंटर की कोई सेवा है वहां जाना चाहिए, और इतना हल्का फील करते हैं, कारोबार भी कई गुना बढ़ गया। तो आखिर कोई ना कोई हमारे पीछे संभालता है, तब तो मैं इतना फ्री निकल जाता हूं, वो कौन संभालता है? वही लोग जिसमें से पहले मैं किसी किसी को देखता था तो उसको देखते ही मुझे गुस्सा आता था, उसकी कमी कमजोरी दिखती थी। कभी कोई स्पेशल काम है अगर किसी को अलॉट करना होता था तो हम ढूंढते थे कि नहीं कोई ये व्यक्ति सामने आएगा, नहीं ये तो नहीं कर पाएगा, खास उस आदमी को बुलाते थे। आज हमारी सोच में परिवर्तन आया कि जैसे दीदी बता रहे थे कि कोई भी मनुष्य बिना गुण का है ही नहीं, वो आत्मा है, परमात्मा का बच्चा है, तो उसके अंदर गुण है। ये सिर्फ हमारे अंदर वो तरसने की, परखने की शक्ति चाहिए कि इसके अंदर क्या गुण है और हमें कहां यूटिलाइज करना है। तो आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कई हैंडीकैप बच्चे भी जॉब करते हैं और सब इतने अच्छे रूप से काम करते हैं, मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलता है और वो भी अपना घर समझ के कार्य करते हैं। अब बड़े से बड़े डिसीजन हमारे एब्सेंस में वो लेते हैं, सब कुछ करते हैं। आज मैं 3 दिन से यहां पे हूं, बिजनेस का अभी तक मुझे एक भी कॉल नहीं आया, कारोबार तो वहां चल रहा है। तो ये व्यवसाय में, प्रोफेशनल जीवन में हमें इसका लाभ मिला। आज हमारे क्लाइंट है, पहले हम माउंट आबू आते थे तो एक मन में क्वेश्चन होता था कि क्या बोलेंगे, कुछ काम रुका होगा। अभी उन्हों को भी जब ये पता पड़ा कि ऐसे ऐसे संस्था में जाते हैं और इनके व्यवहार में ये परिवर्तन है, वो खुद भी देखते हैं, लोग वर्णन भी करते हैं, तो अभी कोई क्वेश्चन भी नहीं करता। हम बिंदास साल में 7-8 बार आते हैं, कोई न कोई सेवाओं के निमित्त, कोई न कोई प्रोग्राम में, कारोबार अपना चल रहा है। मैं आपको परिवार की एक पर्सनल बात बताऊंगा। जैसे 2000 में जब मैं ज्ञान में आया तो हमारे बच्चे 8th-9th standard में पढ़ रहे थे। स्वाभाविक है उस एज में बच्चों को कुछ संग का रंग लगता है, थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं। हम लोग सुबह से शाम तक कारोबार में बिजी रहते थे, तो ये क्वेश्चन रहता था कि हमारे बच्चों को एक अच्छी दिशा कैसे मिलेगी, क्योंकि हम तो इतना समय दे नहीं पाते हैं। तो बहुत अच्छा एक इलेक्ट्रिकल का थ्योरी है, जैसे आप भी सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक का जनरेटर होता है वो कैसे बिजली प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली उसमें होता क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में जब कंडक्टर को रोटेट करते हैं, उसको घुमाते हैं, तो स्वतः ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो मुझे ये थ्योरी बहुत प्रेरित किया कि घर में अगर मैं ऐसा वातावरण बना दूं मेडिटेशन करके, अपने खान पान की शुद्धि करके, नियमित ज्ञान योग करके, तो उसमें आने वाली जो भी आत्मा है, चाहे वो मेरा बेटा हो, मेरी बेटी हो, या कोई भी दोस्त आता है, कोई रिलेटिव आता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा है और वो उस आध्यात्मिक फील्ड में आएगी और उसको प्रेरणा ना मिले, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमने वहां भी इसी दृढ़ता से अप्लाई किया, घर में मेडिटेशन रूम बनाया, जो भी घर में भोजन बनता है जिस प्रकार का भी हो, सात्विक भोजन है, पहले परमात्मा को भोग लगाते हैं, वो भोजन सभी करते हैं, प्रसाद बन जाता है, तो सबों के मन में इसका बहुत अच्छा परिवर्तन है। हमारी जो मिसेज है, हमारी वाइफ, उनको थोड़ा फिजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि वो चल नहीं पाती है। आज दुनिया में लोगों को परेशानियां क्या है, समस्याएं क्या है, यही समस्या है। एक बीमारी हो गई, पूरा घर जैसे बीमार पड़ जाता है, कौन देखेगा, क्या करेगा। आज उस बीमारी को झेलते हुए वो भी इतना संतुष्ट है, माने परिवार से, हम लोगों के व्यवहार से, और पूरे घर को अभी भी दिशा वो देती है। और हम भी अपने कारोबार के हिसाब से कहीं जाना हुआ या माउंट आबू आना हुआ, फ्री रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली है, सबों का आपस में कितना प्रेम बढ़ गया। तो इस प्रकार से हमारे दोनों ही जीवन में, पारिवारिक जीवन, व्यवसायिक जीवन में इसका भरपूर लाभ मिला। और अब तो हम इस सबको यही कहते हैं कि सचमुच में अगर हमारे जीवन की नैया को सही रास्ते पे ले जाना है, अपने बच्चे को अच्छा भविष्य देना है, तो उसको इस आध्यात्मिक ज्ञान से जरूर जोड़ना है, फिर बाकी आप निश्चिंत हो सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग जो भी प्राप्त कर रहे हैं, इसे सिर्फ हमें लेके रखना नहीं है, इसे हमें लोगों में बांटना है। क्योंकि हमारा लक्ष्य ही क्या है, हमें देवता समान बनना है, देवता माना देने वाला। तो जो भी हमें प्राप्त हुआ है, परमात्मा ने दिया है, हमें जाकर के अपने स्थान पे, चाहे परिवार हो, हमारा कारोबार के लोग हैं या समाज है, सबको देना है। तो एक दिन वो आएगा जब पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। ओम शांति।
ओम शांति। सिंह भाई जी ने हमको अपने अनुभव से बहुत भरपूर किया, इसलिए दुनिया में भी कहते हैं कि देखा हुआ भी भूल सकते हैं, सुना हुआ भी भूल सकते हैं, हमने खुद जो बोला है वो भी भूल सकते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में जो प्रैक्टिकल अनुभव किया है वो कभी भी नहीं भूल सकते। इसलिए हम सभी बहुत तहे दिल से सिंह भाई जी का धन्यवाद करते हैं। और दीदी जी ने भी हमको बहुत सहज शब्दों में इस शांति की कुंजी जो है सामने रखी, उसके लिए हम दीदी जी के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे। दुख को सुख में परिवर्तन की ये घड़ी है, दुख को सुख में परिवर्तन की ये घड़ी है, आत्मा की परमात्मा से मिलन की ये घड़ी है, आत्मा की परमात्मा से मिलन की ये घड़ी है। मुझे भाग्य की तकदीर मेरे सामने खड़ी है, मुझे भाग्य की तकदीर मेरे सामने खड़ी है, उसको पाने की शांति ही एक लुप्त कड़ी है, एक लुप्त कड़ी है। तो हम तहे दिल से वापस दीदी जी और सिंह भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शांति।